वैसे तो मैं इस भागवत कथा भागवत क्लास देने का योग्य नहीं हूँ, पर मेरे से जो श्रेष्ठ भक्त हैं उन्होंने मुझे आज्ञा दिया है कि मुझे अपने शुद्धि के लिए और प्रैक्टिस के लिए मुझे भागवतम की का क्लास देना चाहिए। तो इसीलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई है, अवकाश दिया गया। तो भागवतम का जो छठा स्कंध है वो तो शेष हो गया, सिक्स कैंटोज ओवर, एंड हम अभी सातवें स्कंध पे आए हैं। और मैं दक्षिण भारत से हूँ तो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो अगर कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिए। तो मैं अभी अभी जस्ट भागवतम क्लास शुरू होने के पहले जो हम नारायण नमस्कृत्यम श्लोक कहते हैं तो मैं वही भूल गया था। तो मैं यही सोच के मन ही मन हंस रहा था कि हम लोग कितने निर्भर हैं भगवान के कृपा पे, एक छोटी सी चीज़ भी कहने के लिए कि मतलब ये भी हम भूल जाते हैं। तो जो सिक्स्थ कैंटो है वो अभी समाप्त हो गया है, छठा स्कंद। तो उसमें जो है हम देखते हैं कि वृत्रासुर की जो कहानी है वो है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भागवतम में, और दूसरे पुराणों में भी इसके व्याख्या की गई है कि वो महान कृति जिसमें वृत्रासुर की कहानी है उसको आप किसी को दान में देंगे तो उसका इतना महत्व है। तो दूसरे अन्य पुराणों में भी भागवतम को दूसरों को दान में देने की बात कही गई है, और क्योंकि लोग गलत ना समझें कि कौन सी किताब भागवतम है, तो उन्होंने कहा है कि वो किताब जिसमें वृत्रासुर की कहानी है। और मैं अभी आज ही देख रहा था कि प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है वो एक ही चीज़ पे केंद्रित है, प्रभुपाद कहते हैं एक ही चीज़ पे केंद्रित है, और वो वही चीज़ है जिसका आज्ञा उनके गुरु महाराज ने उनको दिया था, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको दिया था, वो है पुस्तक वितरण। बोलते हैं हमारा पूरा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी पे केंद्रित है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। तो कृपया मेरे बाद श्लोक दोहराइए। श्री राजोवाचा समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवदीत् विषमो यथा। श्रीराजोवाच समप्रिय सुहृद् ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवदीद् विषमो यथा। श्रीराजोवाच समप्रिय सुहृद् ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवदीद् विषमो यथा। श्रीराजोवाच समप्रिय सुहृद् ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवदीद् विषमो यथा। श्री राजोवाच महाराज परीक्षित ने कहा, समा समान प्रिय प्रिय सुहृत मित्र ब्रह्मन् हे ब्राह्मण शुकदेव भूतानाम समस्त जीवों के सुहृत मित्र भगवान परमेश्वर विष्णु स्वयं स्वयं इंद्रस्य इंद्र के अर्थे लाभ के लिए कथम कैसे दैत्यान असुरों को अवदीत मारा विषम पक्षपात यथा मानो अनुवाद और तात्पर्य श्री कृष्ण कृपामूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु सबों के शुभ चिंतक होने के कारण हरेक को समान रूप से अत्यधिक प्रिय हैं, तो फिर उन्होंने किस तरह इंद्र का पक्षपात किया और उसके शत्रुओं को मारा। सबों के प्रति समभाव रखने वाले व्यक्ति किस तरह किसी के प्रति पक्षपात करेगा और अन्यों के प्रति शत्रुभाव रखेगा। कृपया मेरे बात दोहराइए। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु सबों के शुभ चिंतक होने के कारण हरेक को समान रूप से अत्यधिक प्रिय हैं, तो फिर उन्होंने किस तरह इंद्र का पक्षपात किया और उसके शत्रुओं को मारा। सबों के प्रति समभाव रखने वाला व्यक्ति किस तरह किसी के प्रति पक्षपात करेगा और अन्यों के प्रति शत्रुभाव रखेगा। तात्पर्य, भगवद गीता में भगवान ने कहा है, समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योस्ति न प्रियः। मैं सबों पर समभाव रखता हूँ, ना तो कोई मुझे प्रिय है ना कोई मेरा शत्रु है। किंतु पिछले स्कंद में यह देखा गया है कि भगवान ने इंद्र के लिए असुरों का वध करके उसका पक्षपात किया। हतपुत्रादिति शक्रपाणिर्ग्राहेण विष्णुना। अतएव भगवान स्पष्टतः इंद्र के पक्षधर थे, यद्यपि वे सबों के हृदय में स्थित परमात्मा हैं। जिस तरह सबों को आत्मा अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार सबों को परमात्मा भी प्रिय है। अतएव परमात्मा से कोई त्रुटि नहीं हो सकती। रूप तथा स्थिति का विचार किए बिना भगवान सभी जीवों के प्रति सदैव दयालु रहते हैं, फिर भी उन्होंने एक सामान्य मित्र की भांति इंद्र का पक्ष समर्थन किया। यही परीक्षित महाराज की जिज्ञासा का विषय था। कृष्ण भक्त के रूप में वे ये भली भांति जानते थे कि कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते, किंतु जब उन्होंने देखा कि कृष्ण ने दैत्यों के साथ शत्रु की भांति आचरण किया, तो उन्हें कुछ संदेह होने लगा। अतएव उन्होंने स्पष्ट उत्तर जानने के लिए शुकदेव गोस्वामी से यह प्रश्न पूछा। भक्त यह कभी स्वीकार नहीं करेगा कि भगवान विष्णु में भौतिक गुण होते हैं। महाराज परीक्षित भली भांति जानते थे कि दिव्य होने के कारण भगवान विष्णु को भौतिक गुणों से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु अपने इस विचार की पुष्टि के लिए वे शुकदेव गोस्वामी से सुनना चाहते थे, क्योंकि वे अधिकारी हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, समस्य कतम वैषम्यम। चूँकि भगवान समदर्शी हैं, अतएव वे किसी का पक्ष ग्रहण क्यों करेंगे। प्रियस्य कतम असुरेषु प्रीत्यभावः। परमात्मा होने के कारण भगवान प्रत्येक को अत्यंत प्रिय हैं, तो फिर भगवान असुरों के प्रति निष्ठुरता क्यों बरतने लगेंगे। यह पक्षपात किस लिए। सुहृदश्च कतम तैश्व सौहार्दम। चूँकि भगवान कहते हैं कि वे सुहृदम सर्वभूतानाम अर्थात समस्त जीवों के शुभ चिंतक हैं, तो फिर वे दैत्यों का वध करके पक्षपात क्यों करते हैं। ये प्रश्न परीक्षित महाराज के मन में उठे, अतएव उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न किया। तो ये जो श्लोक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक भक्त पूछ रहे हैं। परीक्षित महाराज भगवान के एक विशेष भक्त हैं, भगवान के लिए बहुत प्रिय हैं। तो ऐसे भक्त हमेशा दूसरों के कल्याण हेतु ही प्रश्न पूछते हैं, कोई भी कार्य करते हैं। तो समोहम सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं कि मैं सबके लिए एक बराबर हूँ। सारे जो भी जीव हैं, वो इंद्र हैं या इंद्रगोप हैं, यानी कि वो छोटे से चींटी हैं या इंद्र हैं या ब्रह्मा हैं, सभी के लिए वो समभाव रखते हैं। वो ना किसी से द्वेष करते हैं, ना ही कोई उनके लिए अत्यधिक प्रिय है। पर साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जो भक्त है, जो मेरी उपासना करता है, उसके लिए उसका मैं मित्र हूँ। वो कहते हैं कि मैं उसका मित्र हूँ, वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ, ये भी कहते हैं। तो ये दोनों बातें क्या हम आसानी से इनको समझ पाएंगे कि भगवान एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि मैं सबके लिए संभाव रखता हूँ, और ये भी कहते हैं कि मैं किसी का विशेष मित्र भी हूँ, तो ये कैसे संभव है? तो इसमें हम एक श्लोक देख के इसको समझ सकते हैं, जो चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्ततैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो इसका ये मतलब है कि भगवान ये कहते हैं कि जिस भावना से, जिस तरह से लोग मेरे साथ भावों का आदान प्रदान करना चाहते हैं, वैसे ही मैं उनके तरफ अपना भावों का भी आदान प्रदान करता हूँ। तो ये तो सामान्य रूप में ये देखा जाता है। और प्रभुपाद एक जगह पे ये भी कहते हैं कि जो पिता है वो बहुत ही दयालु हो सकता है। जो सामान्य जो इस जगत के एक पिता हैं, वो सबके प्रति दयालु हो सकते हैं, वो बहुत ही पुण्य कार्य करने वाले, दूसरों को दान धर्म करने वाले होंगे, लेकिन उनके लिए अपने पुत्र तो प्रिय होंगे ही, वो विशेष होंगे ही। तो इसी संदर्भ में एक बार बीरबल और अकबर के बीच में एक चर्चा हुई थी। तो आपने सुना ही होगा कि अकबर को जो वैदिक धर्म है, जिसको उस ज़माने में लोग हिंदू कहते थे उनके समय में, तो उनको रुचि थी और वो जानना चाहते थे, वो जिज्ञासु भी थे। तो उन्होंने ये सुना कि भगवान कहते हैं योग क्षेम वहाम्यहम, भगवान कहते हैं ना कि मैं स्वयं अपने जो अनन्यास चिंतयंतो माम ये जनाम पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेम वहाम्यहम। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, जो मेरी उपासना करते हैं, तो उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको मैं स्वयं पूरा करता हूँ। हाँ, तो उनको ये बात ठीक समझ में नहीं आई। वो कहते हैं कि आपके भगवान वास्तव में भगवान हैं, तो उनको स्वयं ये कार्य करने की क्या ज़रूरत है? वैसे सोचा जाए तो ये वाजिब सवाल है, मतलब इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, कि जो व्यक्ति इतना शक्तिशाली है उसको स्वयं कोई कार्य करने की क्या ज़रूरत है? और भगवान स्वयं श्री कृष्ण ये कहते हैं भगवद गीता में कि मेरे लिए कोई कार्य नहीं है करने के लिए, है ना? वो कहते भी हैं कि पूरे विश्व में मेरे लिए कोई कार्य नहीं है, फिर भी वो कहते हैं कि मैं कार्य करता हूँ। तो अकबर ने ये पूछा तो बीरबल ने प्रयास किया उनको समझाने का कि हाँ, भगवान उनको लगाव है इसलिए करते हैं, तो फिर भी वो पूरी तरह से तृप्त नहीं हुए। तो बीरबल ने कहा कि मैं आपको थोड़े दिनों पश्चात समझाऊंगा। तो अकबर का एक प्रिय पुत्र था, तो वो बहुत उनसे लगाव था अकबर को, छोटा था। तो एक दिन बीरबल ने कहा अकबर को कि चलिए हम सब लोग नौका विहार के लिए जाते हैं। तो नाव पे सब लोग जाते हैं, तो बीरबल अकबर के नौका में नहीं बैठते, वो दूसरे नौका में बैठते हैं। कहते हैं कि हम आपके पुत्र को भी ले जाएंगे। तो उनको पुत्र को भी ले गए साथ में दूसरे नाव में, और अकबर पीछे एक और नाव में। तो बीरबल ने क्या किया कि अचानक अकबर ने देखा कि उनका बेटा और बीरबल दोनों साथ साथ खड़े हैं नाव के पास, और अचानक अकबर देखते हैं कि बीरबल ने उनके जो बेटे को पानी में ढकेल दिया। तो अकबर ने देखा मेरा पुत्र पानी में जल में गिर गया है, तो तुरंत वो अपने नाव से पानी में कूद पड़े और आके उस पुत्र को बचाने की चेष्टा किए। और जब पुत्र के पास पहुंचे तब उन्होंने देखा कि ये पुत्र नहीं एक पुतला है जो बिल्कुल उनके पुत्र जैसा है। तो फिर वापस वो अपने नाव पे आए और बीरबल से बहुत क्रोधित हुए कि तुमने ये क्यों किया, मेरे साथ तुम मजाक कर रहे हो। तो बीरबल ने कहा कि मैं आपको कुछ बताना चाहता था, आप ही के प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि आपने ये पूछा कि भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए क्यों आते हैं, है ना, उनकी रक्षा के लिए, उनकी उनकी जो ज़रूरत है वो पूरा करने के लिए क्यों आते हैं। तो इसका जवाब यही है, आपके साथ बहुत सारे सैनिक खड़े थे नाव पे और आपसे भी ज़्यादा अच्छे तैरने वाले भी थे उनमें, है ना, फिर भी आपने उनको निर्देश नहीं दिया कि जाओ मेरे बेटे को बचाओ, पहले आप कूद गए, बाद में वो लोग भी कूदे आपको देख के आपके बेटे को बचाने, तो आप क्यों आए। तो जो भावना आप में है तो वैसे ही भावना, जय श्री श्री राधिका रमन की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो जो भाव आप में है वैसे ही भाव भगवान में भी है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो इस तरह से उन्होंने अकबर को ये बात समझाया कि भगवान जो भावनाएं हम रखते हैं वैसे ही भगवान हमारे प्रति भावना रखते हैं। तो ये पक्षपात नहीं है, अगर कोई कॉलेज में कोई लड़का है या स्कूल में कोई लड़का है जो बहुत अच्छे से पढ़ता है और जिसने अपने आंसर शीट में जो मतलब प्रश्न उत्तर के जो उसने बहुत सही तरीके से दिया है उसको वास्तव में 100 में 100 मिलना चाहिए, 100% अंक मिलना चाहिए, और दूसरा एक और लड़का है उसने कुछ पढ़ाई नहीं की, उसको क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने बहुत बुरी तरह से उसने लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, उसको 30% अंक भी नहीं दिए जाने चाहिए। तो दोनों छात्रों को अगर लोग बोले कि पक्षपात करना ठीक नहीं है तो अध्यापक को दोनों को एक ही अंक देने चाहिए, तो दोनों को आप 70-70 दे दो, है ना, दोनों को आप 70 दे दो, पक्षपात की जरूरत ही नहीं है, सबको आप समभाव से देखिए। और ये कौन सी परीक्षा है, ये डॉक्टर की परीक्षा है, यानी कि उसके पश्चात वो डॉक्टर बनेंगे दोनों। तो दोनों को उन्होंने वैसे ही दे दिया एक बराबर, तो क्या हाल होगा। तो दोनों के साथ अन्याय है और जो सामान्य जनता है उनके साथ भी अन्याय है। क्यों, क्योंकि जो अच्छे मतलब जिन्होंने लिखा है उनकी श्रेष्ठता को माना नहीं गया है। तो आम जनता जो डॉक्टर के पास जाते हैं वो तो अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं ना कि उनकी चिकित्सा ठीक से हो। तो क्या होगा, दोनों एक बराबर होंगे तो सामान्य जनता भी दोनों को एक बराबर मान के जाएंगी और कुछ लोग मतलब रोगग्रस्त ज्यादा होंगे और एक तो ये मतलब पक्षपात हुआ वास्तव में, अगर दोनों को एक ही तरह से अंक दिए गए तो पक्षपात हुआ। तो वैसे ही हम देखते हैं समाज में लोग मतलब हम लोग पॉलिसीज बनाते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह का हम पॉलिसीज बनाते हैं, पर हम पॉलिसी सोच समझ के शायद कभी कभी नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो लोग ऐसे पॉलिसीज बनाते हैं वो स्वयं उन डॉक्टरों के पास नहीं जाएंगे जिनको उन्होंने रॉन्गली एनकरेज किया है। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो वेद कहते हैं वो मतलब वेदों में जो भौतिक जीवन के भी उपदेश हैं, सिर्फ आध्यात्मिक उपदेश नहीं है, हालांकि भागवतम पूर्ण तरह से आध्यात्म के प्रति है। तो वेदों में ये भी कहा गया है कि आप दूसरों को श्रेष्ठता के ऊपर उनको उनका पद दीजिए, उनको श्रेष्ठ बनने का अवसर दीजिए, पर उनको बिना श्रेष्ठता के कोई पद ना दीजिए। तो भगवद गीता में भी यही है कि हम जैसे भारत में हम लोग कास्ट सिस्टम के विरोध कहते हैं, तो कास्ट सिस्टम जिस तरह से हम समझते हैं वो है ही नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं चातुर्वर्ण्य माया सिस्टम गुण कर्म विभागशः, तो गुण और कर्म अनुसार हमारा जो है वर्ण ये तय होता है, जन्म से नहीं। तो यही बात हम यहाँ देखते हैं कि भगवान एक व्यक्ति की पात्रता अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार, उनकी भावना के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार उनके साथ भावों का आदान प्रदान करते हैं, तो इसलिए वो पक्षपात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जैसे हम ये अध्याय में आगे जाएंगे, सुखदेव गोस्वामी इस बात की पुष्टि देंगे, अनेक बातें कहेंगे, अनेक उदाहरणों के माध्यम से वो ये कहेंगे और ये सिद्ध करेंगे कि भगवान पक्षपात नहीं करते। जो व्यक्ति की पात्रता है उसी के अनुसार वो उनको उनका जो फल है वो देते हैं। और प्रभुपाद एक और जगह एक तात्पर्य में ये कहते हैं कि जो भक्त हैं वो दैवी प्रकृति में आश्रिता, मतलब दैवी प्रकृति में वो आते हैं, भौतिक प्रकृति में आते ही नहीं हैं जो भक्त हैं। तो जो भगवान का आश्रय लेते हैं वो दैवी शक्ति के आश्रय में आते हैं। तो जब दैवी शक्ति में आश्रय में आते हैं तो भगवान का उनके साथ जो आदान प्रदान है वो अलग ही होता है। तो उसकी हम भौतिक दृष्टि से जो आदान प्रदान होता है इस भौतिक जगत में उसके साथ हम तुलना कर ही नहीं सकते। और एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, भगवान ये कहते हैं कि मेरा जो दिव्य प्रकृति है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो उनके जो जन्म है, उनके जो कर्म है वो दिव्य है ना। तो ये जो आरोप लगाया जाता है कि भगवान पक्षपाती हैं, वो आरोप गलत है, वो अज्ञानवश किया जा रहा है। तो भगवद गीता का हम ये श्लोक देखेंगे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो ये तत्व को जानता है वो इस शरीर छोड़ने के पश्चात त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा ना? और भगवान ये भी कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढां मानुषीं तनुमाश्रितः। तो जो मूढ़ व्यक्ति है, जो अज्ञानी है, वो ये समझते हैं कि मैंने एक मनुष्य देह धारण किया हुआ है। तो मनुष्य देह का मतलब है भौतिक शरीर, और भौतिक शरीर में द्वंद्व होता है, ड्यूअलिटी होता है, कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है ना? वी एक्सेप्ट समथिंग एंड वी रिजेक्ट समथिंग। तो ये जो चीजें हैं, ये द्वंद्व जो है वो भौतिक जगत में है, वो आध्यात्मिक जगत में नहीं है। तो इसी संदर्भ में हम ये भी देख सकते हैं, तो आगे इस स्कंद में हम देख सकते हैं कि हिरण्यकश्यपु आएंगे, हिरण्याक्ष आएंगे, तो जिनको भी भगवान श्री कृष्ण या विष्णु मारते हैं उनको भी वही लाभ मिलता है, उनको भी भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो जो असुर हैं जिनको भगवान मारते हैं उनको भी भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो उनके कार्य में, उनके कार्य सर्वदा लाभदायक है। उनके द्वारा अगर किसी का शासन भी होता है या किसी को प्रेम करते हैं, दोनों उस व्यक्ति के लिए लाभदायक हैं। तो आगे एक और हम चित्रकेतु की जो कहानी है वो भी हम याद कर सकते हैं कि चित्रकेतु के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो चित्रकेतु ने परमेश्वर शिव शंकर को देखकर वो हंस पड़े, मतलब उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि वो कुछ गलत कार्य कर रहे हैं। हालांकि प्रभुपाद उसमें ये बताते हैं कि उन्होंने उनकी निंदा तो नहीं की, इट वॉजेंट, जैसे हम कहते हैं वैष्णव निंदा, तो निंदा हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने पहले उनका गुणगान किया, उनके सर्वोच्च पद का उन्होंने, मतलब वो उन्होंने सबको बताया कि भगवान शिव शंकर कितने महान हैं। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि वो ऐसा कार्य कर रहे हैं ये देख के मैं हैरान हूं। तो इसमें हम देखते हैं, और जब उनको माता पार्वती ने उनको शापित किया तो भी वो दुखी नहीं हुए, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया क्योंकि वो जानते थे कि ये भी उनके हित के लिए है। और प्रभुपाद ये बताते हैं कि भगवान चाहते थे कि जल्दी से चित्रकेतु जो है वापस भगवत धाम आए, तो इसीलिए उनको शापित किया गया, वो वृत्रासुर का उन्होंने रूप लिया, तो जो हमने छठे स्कंद में देखा है वृत्रासुर का उन्होंने रूप लिया और उनको इंद्र ने मारा। तो यहाँ तक कि वृत्रासुर जो है वो असुर का रूप धारण किए हुए हैं, फिर भी वो इंद्र को उपदेश दे रहे हैं कि आप नारायण कवच में विश्वास रखिए, हाँ आपको अविश्वास क्यों हो रहा है, आप भगवान विष्णु के शक्ति में विश्वास रखिए और आप प्रयास कीजिए, आप मुझे मार सकेंगे। तो ये है भक्त का लक्षण कि किसी भी अवस्था में वो भगवान के प्रति उनकी जो निष्ठा है, विश्वास है, वो अटूट रहती है और हर कार्य में वो देखते हैं कि भगवान उनके लिए उनकी जो हित में है वही कर रहे हैं, अहित कभी नहीं कर रहे हैं। तो हम यहीं पे विराम करते हैं, किसी को कोई शंका हो, मेरे से कोई त्रुटि हुई हो, कमेंट्स हो तो आप बोल सकते हैं। धन्यवाद। हाँ ये बात सही, हाँ प्रभु ने ये सही बात कहा, प्रभु ये कह रहे हैं कि हमने सुना है कि जिन असुरों को भगवान स्वयं मारते हैं उनको आध्यात्मिक जगत तो प्राप्त होता है लेकिन वो सायुज्य मुक्ति में जाते हैं, वो भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं। ये बात सही है और ये बात हम आगे सुनेंगे कि जब उन्होंने शिशुपाल को मारा तो उसी के संबंध में फिर से एक प्रश्न पूछा जाता है कि शिशुपाल तो उनके वैरी थे तो वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर में कैसे विलीन हो गए, तो फिर ये कहा जाता है कि हाँ जो असुर हैं जो ऐसे द्वेष भाव रखते हैं उनको ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का मौका प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद ये मतलब हैरानी के से कहते हैं कि अगर असुर के साथ ऐसा इतना ज़्यादा कृपा होगा तो जो भक्त प्रेम पूर्वक उनके साथ भक्ति का आदान प्रदान करते हैं तो उनका कितना अच्छा सद्गति होगा। धन्यवाद प्रभु। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।